जय श्री साई राम। साई वैष्णव अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
Sumiran, Namaskar, Shri Hari Sumiran. नाम संकीर्तन श्री हरि सुमिरन प्रभात काले दर्शन दे साईं चन मंगल दर्शन भक्ति समर्पण प्रेम समर्पण भक्ति समर्पण प्रेम समर्पण
भक्ति समर्पण
तुम भोले भाले दर्शन दे साईं नाथ
भोले भाले दर्शन दे साईं नाथ
प्रभात काले दर्शन दे साईं नाथ
श्री साईराम। एक प्रश्न है जो मन में बार बार उठ रहा है। हमने देखा कि आजकल लोग अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। खासकर यंगस्टर्स आप देखेंगे बाहर सड़कों पे जॉगिंग कर रहे होंगे, जिम जा रहे होंगे, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे, स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे। खासकर जिम खाना, जिमनेजियम सब भरे होते हैं, अच्छा लगता है देखने में। आज की युवा पीढ़ी, यूथ ध्यान दे रही है स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर पर ध्यान दे रही है। शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। क्या होता है आप पहले भी जानते थे, अगर हम व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करते हैं हमारे शरीर में फैट जमा हो जाता है, मोटापा आ जाता है। कभी आपने विचार किया, हम जिम जा रहे हैं, नित्य व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त हो रहा है, होना भी चाहिए। शरीर के बिना आप कर्म भी कैसे करेंगे? लेकिन शरीर के भीतर है क्या? शरीर बना किस से? वैज्ञानिक कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, शरीर पांच तत्वों से बना है, फायर अर्थ एयर वाटर ईथर, अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश। शरीर के भीतर है क्या वो ये पांच तत्वों से बनी है? लेकिन दो सूक्ष्म चीजें ऐसी हैं, एक तो है मन, दूसरी है आत्मा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई आत्मा जो है ना अमर है, अजर है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता। ये भी कहा है शास्त्र में कि आत्मा पांच तत्वों से नहीं बनी है। फिर किससे बनी है इसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन पांच तत्वों से नहीं बनी है। मृत्यु के पश्चात घर वाले आपके शरीर को उठाकर जला देंगे, दफना देंगे। आपका शरीर पांच तत्वों से बना है, मृत्यु के पश्चात ये निश्चित है, कंफर्म्ड, एब्सोल्युटली कंफर्म्ड। ये पांच तत्व वापस पांच तत्वों में मिल जाएंगे, शरीर को जला देंगे, अग्नि को दे दिया, बची कुछ अस्थियां हड्डियां होंगी जाके गंगा में या जल में प्रवाह कर देंगे, मन किससे बने हैं? कहते हैं मन बड़ा सूक्ष्म है, मन बड़ा सटल है, शरीर ग्रॉस है, स्थूल है, शरीर भौतिक है, कंपोज्ड है, आत्मा अभौतिक है। मन इतना सूक्ष्म है, इतना सटल है, एक चीज और भी हमारे भीतर है, वो है चित्त। चित्त को हम मन के साथ ले लेते हैं एज ए पैकेज डील। अहंकार भी है, उसको भी मन के साथ ले लेते हैं एज ए पैकेज डील। मन जो है किससे बना है उस पर ध्यान ना देके पहले ये ध्यान देते हैं वो है क्या। शास्त्र कहते हैं माइंड इज द बंडल ऑफ डिजायर्स। मन जो है वो इच्छाओं से बना है। मन चंचल है, आपने सुना होगा कहावत है ना, मन चंचल है क्योंकि हमारी इच्छाएं चंचल हैं। एक इच्छा खत्म होती है, दो और बढ़ जाती हैं, तो उसके हिसाब से सोचा जाए तो मन का बहार बढ़ता जा रहा है। कभी सोचिए आप शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, मन के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? अगर आप रास्ते में चलती हुई किसी एक युवा कन्या को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, नारी को देखते हैं, आपके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। एक पुरुष को देखते हैं, जवान व्यक्ति को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, आपके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। पल दो पल के लिए, कुछ समय के लिए बार बार वो व्यक्ति आपके दिमाग में, आपके मन में उभरता रहता है। आपने बहुत सुंदर स्त्री देखी, आप घर में आ गए, आंखें बंद करेंगे आपको स्त्री नजर आएगी। वहां स्त्री है नहीं, आपने बाहर सड़क पे चलती हुई देखी थी, आपने किसी सिनेमा हॉल में देखी थी, आपने कहीं नृत्य करते उसका पाया होगा, कहीं देखा होगा, किसी ड्रामा में देखा होगा, किसी पार्टी में मिले होंगे, किसी सत्संग में देखा होगा। वहां आपके सामने एक ग्रॉस बॉडी थी जो पांच तत्वों से बनी है, एक स्थूल शरीर था। लेकिन जब घर में आके आपने आंखें बंद करी, वो नारी वहां पर नहीं थी, फिर भी आपको नजर आ रही है आंखें बंद करते ही। वो सूक्ष्म रूप है, दैट इज अ सटल बॉडी। अब जरा सोचिए वो सटल बॉडी है कहां पर? मन में। जब हम बार बार किसी ग्रॉस चीज के बारे में सोचते हैं, फिलहाल छोड़िए, अगर हम बार बार किसी नारी के बारे में सोचते हैं या पुरुष के बारे में सोचते हैं, हमारी बुद्धि उस प्रकार की होने लग जाती है। अगर बार बार हम केवल प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, मकान के बारे में सोचते हैं, जायदाद के बारे में सोचते हैं, हमारी बुद्धि वन डायरेक्शनल हो जाती है, ایک طرفہ ہو جاتی ہے. اگر دن بھر کی ہماری کریا کیول گروس باڈیز کے اوپر ٹکی رہے گی, ہماری بدھی بھی گروس ہو جاتی ہے. اگر ہم بار بار گروس باڈی کے بارے میں سوچ کے, ستھول شریر کے بارے میں سوچ کے کام واسنائیں اندر لے کے آ رہے ہیں, وہ سوشمتا ہے, تو ہمارے من میں وہ چیزیں جمع ہوتی جا رہی ہیں, من کا باہر بڑھ رہا ہے. There is no device which can measure the weight of the mind. ایسا کوئی یندر نہیں ہے جو آپ کے من کے باہر کو آپ کو بتا پائے, لیکن آپ تو زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. من کیا ہے؟ اچھاؤں کی گٹھی, the bundle of desires. من میں کیا ہے؟ دن بھر میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ تو ہیں ہی سوکشم روپ میں, لیکن جب آپ اس پہ منن کرتے ہیں, جب آپ اس بات کو بارمبار سوچتے ہیں, جب بارمبار آپ منن کرتے ہیں, منن کرتے ہوتا ہے کنٹمپلیشن, تو من کے ساتھ بدھی بھی ویسے ہونے لگ جاتی ہے. اگر بھگوان نہ کرے آپ کی مرتیو ہو جائے, بھگوان کرشن نے تو کہہ دیا انت کال میں جو میرا سمرن کرے گا میں اس کو مت کر دوں گا, مجھ تک پہنچ جائے گا. کبھی آپ نے وچار کیا جب کبھی کسی کا آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ اینستھیسیا دیتے ہیں. اس انگ کو کہتے ہیں لوکو اینستھیسیا, اس انگ کو بے ہوش کر دیتے ہیں یا آپ کو پورا بے ہوش کر دیتے ہیں, آپ کو آپریشن کر دیتے ہیں. جب آپ کو ہوش آتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی میرا آپریشن ہو چکا ہے. اس دوران اس بیچ میں آپ کو نہیں پتا لگتا کیا ہو رہا ہے. ذرا وچار کیجئے, آپ کے شریر کے اندر سننے والی بات ہے, آپ کے شریر کے اندر کوئی چیز جمع ہو گئی, کوئی گروتھ ہو گئی ہے, ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کو کاٹ پیٹ کے باہر نکال دیتے ہیں. آپ بات کو مانتے ہیں نا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا جو انسان کی مرتیو ہوتی ہے جب آتما باہر نکلتی ہے وہ آپریشن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے اس سمے کوئی ڈاکٹر آپ کے شریر کو کاٹ پیٹ نہیں رہا ہے, لیکن پرماتما سے بڑا کون سا ڈاکٹر ہے بھائی. جب آپ کے بھیتر سے آتما باہر نکل رہی ہوتی ہے, ذرا وچار کیجیے گا, ٹرائی ٹو ریلیٹ اٹ. آپ کے پیٹ میں کوئی چیز ہے جس کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر نے آدھے گھنٹے کا آپریشن کیا, اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو بے ہوش بھی کر دیا, پورا پروسیس لگا ایک گھنٹے کا, ایک گھنٹے میں انہوں نے آپ کے پیٹ میں سے کوئی چیز نکال دی, وہ تو گروس چیز ہے, ستھول ہے, گروس چیز ہے, ستھول ہے. لیکن جب پرماتما آپ کے شریر میں سے آتما کو باہر نکال دے تو سوکشم ہے, اس کا آپریشن بھی سوکشم ہے. مرنے سے جس پہلے, جس بیفور ڈیتھ, جس بیفور ڈپارچر, پرماتما آپ کو بےہوش کر دیتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا ایک کھن کے لیے, می بی فور فریکشن آف اے سیکنڈ, اسی انترال کے بھیتر آپ کا آپریشن ہوتا ہے, آپ کی آتما باہر نکال لی جاتی ہے. تو بے ہوشی میں آپ کس کو یاد کر رہے ہوں گے؟ انتکال میں جب آپ پرماتما کو یاد کرتے ہیں تو انتکال میں تو آپ کو پتا بھی نہیں ہے, اگر پتا بھی ہو میرا انت کب آنا ہے, تب بھی جسٹ فور فریکشن آف سیکنڈ یو ول بی انکانشیس. ہاؤ کوڈ یو ریمبر گاڈ ایٹ دا لاسٹ بریتھ, ایٹ دا لاسٹ منٹ, ایٹ دا لاسٹ سیکنڈ؟ آپ کس پرکار سے بھگوان کو یاد کر پائیں گے, سمرن کر پائیں گے؟ اس سمے آپ ہوش میں ہوں گے ہی نہیں, تو پھر کیا کریں؟ जैसे जिम में जा जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त कर रहे हैं, साथ साथ में मन को भी निर्मल करना पड़ता है। जरा विचार कीजिएगा, कभी आपने सूर्य प्रणाम किया? सूर्य प्रणाम विधि तो नहीं, आप केवल सुबह उठें, उगते हुए सूरज को क्षण भर के लिए देखें, विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। प्रयास कीजिएगा कि आंखें ना, माफ कीजिएगा, पलके ना पलके, आंखों में झपकियां नहीं आए, क्षण भर के लिए आप अपना फोकस कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा सूर्य को, फिर एकदम से आंख बंद कर दीजिए। आप देखेंगे सूर्य को देखने के बाद जब आप आंखें बंद करते हैं, आपको अपनी दोनों आंखों के बीच में जहां पर नाक की सीध है, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं माथे में, वहां पर आपको अपने भीतर चमकता हुआ सूर्य नजर आएगा। यू कैन ट्राई दिस इन एनी डे एट एनी टाइम। आपने सूर्य को देखा, आंखें बंद की, आपको सूर्य का प्रतिबिंब या सूर्य संयम या प्रकाश केंद्र या प्रकाशित सूर्य छोटा सा आपके माथे में नजर आएगा, वो सूर्य का सूक्ष्म रूप है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फिर क्या होगा? क्षण भर के बाद धीरे धीरे प्रकाश लुप्त हो जाएगा, लेकिन आज नित्य अगर रोजाना इस एक्सरसाइज को बार बार करते रहेंगे, आप देखेंगे कि एक दो हफ्ते के बाद यू कैन होल्ड द लाइट, होल्ड द सन इन योर माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड, फॉर द लॉन्गर पीरियड। आप देखेंगे एक दो सप्ताह के बाद आप उस प्रकाश को अपने मस्तक में काफी देर तक रोक पाएंगे। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद अ डिसिप्लिन एक्सरसाइज, धीरे धीरे जब आप इसको नित्य करते रहेंगे, आप देखेंगे एक बार सूर्य को देखते हैं, आंखें बंद करते हैं, आपको अंदर सूर्य नजर आ जाता है और सूर्य वहां रहेगा काफी देर तक। फिर आप सूर्य के प्रकाश को अपने मन से बोल दिया, भैया इसको मेरे बाजुओं में ले जाओ, मेरे हाथों में ले जाओ, मेरी टांगों में ले जाओ, मेरे हृदय में ले जाओ, पूरा शरीर आपका प्रकाश तो ना उठेगा। धीरे धीरे उस प्रकाश को आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर बीम करेंगे, जैसे प्रकाश की रेखा जा रही हो अपने रिश्तेदारों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, बंधुओं के ऊपर, सगे संबंधियों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, धीरे धीरे संसार के प्रत्येक वाणी के ऊपर, प्रत्येक प्राणी के ऊपर डालेंगे, धीरे धीरे प्रकाश आप पूरे पृथ्वी पर डालेंगे, पूरे ब्रह्मांड में डालने लग जाएंगे। आप देखेंगे सब तरफ केवल एक प्रकाश है, यू आर वन विद द लाइट। जैसे जैसे आप ऐसे करते जाएंगे, आपकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, आपके मन की वासनाएं कम होने लग जाएंगे, मन का भार कम होगा। जरा सोचिएगा, जब मृत्यु हो जाती है, शरीर पांच तत्वों में मिल जाता है, आत्मा अपने धाम चले जाती है, मन कहां जाता है? आप जरा कल्पना कीजिए, आपने किसी को ईमेल भेजी है अलोंग विद द अटैचमेंट, जैसे ईमेल जा रही है, ईमेल जो है वो आत्मा है और अटैचमेंट जो है वो मन है, इन दोनों को इकट्ठा मिला दे बोलते हैं जीवात्मा। जीवात्मा का अर्थ होता है असल में आत्मा एम्बॉडीड इन द बॉडी। विचार कीजिएगा आप, आत्मा को आप मार सकते नहीं है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, आत्मा पांच तत्वों से बनी नहीं है, आत्मा परमात्मा का रूप है, लेकिन मन जो है वो फ्लोट होता रहता है, तैरता रहता है। मन में क्या है? आपके जन्म जन्मांतरों की इच्छाएं और से इंप्रेशन ऑफ मेनी लाइव्स और ऑल लाइव्स. जैसे आपने एक फाइल को जिप कर दिया कंप्यूटर लैंग्वेज में और आपने किसी को भेज दी, आपके कंप्यूटर से थ्रू द इंटरनेट दूसरे कंप्यूटर में पहुंच गई, उन्होंने उस फाइल को अनजिप कर लिया, सब डाटा पढ़ लिया. इसी प्रकार से आपका मन इस शरीर से निकल गया, कर्म के अनुसार जब आपको दूसरा जन्म मिलेगा वहां पर वही मन लौट के आएगा, फिर अनजिप होगा, वहां से सारी वासनाएं उभर के बाहर आ जाएंगी, आपका सारा एटीट्यूड वही का वही वापस आ जाएगा. अब जरा सोचिएगा, इस जीवन काल में आपने क्या पाया मेरे भाई? कहीं ऐसा तो नहीं जीवन व्यर्थ हो गया हो? मैं सोचता हूं बार बार, मैंने कल भी इस बात पर विचार किया, मुझे लगा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया. मुझे लगा कि परमात्मा ने मेरे को मनुष्य की योनी दी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं पा पाया. मटेरियल लाइफ तो छोड़िए, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ नहीं पा पाया, ना मटीरियल ना स्पिरिचुअल. परमात्मा ने मुझे मौका दिया कि मैं साधु संतों के सानिध्य में रहूं, उनका सानिध्य दिया, उनकी प्रॉक्सिमिटी दी. मुझे मौका मिला शास्त्र पढ़ने का, मुझे मौका मिला साधु संतों की दिव्य वाणी को सुनने का, मुझे मौका मिला मंदिरों मस्जिदों गिरजाघर में जाके प्रार्थना करने का, मुझे मौका मिला कि मैं अपने आप को ऊंचा उठाऊं. लेकिन टिल टुडे अगर मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूं, दृष्टि दौड़ाता हूं, पाता हूं, मैंने कुछ नहीं पाया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया. कितनी सांसें और हैं केवल ईश्वर जानता है. तो क्या मैं इंतजार करूं उस समय का जब मृत्यु दस्तक दे रही हो मेरे कंठ के ऊपर आके, चलो भाई आत्मा बाहर निकलो, या कुछ ऐसा करूं अभी, ऐसा प्रयास करूं अपने अंतर में जाके अपने अंतर से पूछूं, भाई अब मुझे क्या करना चाहिए? How do I purify at least my mind in this lifetime? किस प्रकार से मैं अपने मन को पवित्र करूं? भगवान बाबा ने एक उदाहरण दिया था. भगवान बाबा ने एक रुमाल निकाला, बोले भाई ये क्या है? लोगों ने कहा स्वामी रुमाल है. स्वामी ने उस रुमाल में से एक धागे को खींचा बाहर, बोले ये क्या है? सब बोले स्वामी ये धागा है. स्वामी ने उस धागे को एक कूड़ेदान में डाल दिया, फिर रुमाल में से एक और धागा निकाला, बोले ये क्या है? स्वामी ये भी धागा है. उन्होंने उस धागे को भी कूड़ेदान में डाल दिया, फिर दिखाया रुमाल, एक हाथ में रुमाल एक हाथ में धागा. धीरे धीरे उस रुमाल में से प्रत्येक धागे को निकालते गए, कुछ समय के बाद रुमाल खत्म हो गया, सारे धागे कूड़ेदान में चले गए. भगवान बाबा बोले ये रुमाल जो है, हैंडकरचीफ है, दिस इज माइंड. उसके अंदर जो धागे थे, दीज आर द डिजायर्स, ये इच्छाएं हैं. जब इच्छाओं को खींच खींच के बाहर निकाल देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आपका मन रिक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है. व्हेन देयर नो माइंड देयर नो रिबर्थ, उसी को मुक्ति कहा गया. आप विचार कीजिएगा, मैं भी करता हूं विचार, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? जो कुछ पल बचे हैं मेरे पास, किस प्रकार से मैं अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करूं? इसलिए किसी शायर ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारी तकदीर लिखने से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से फिर पूछे, बोल तेरी रजा क्या है? जय श्री साईं राम.